نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. متنی دور، یہ ہے آج ہماری سیریز کا ٹاپک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے لفظ مدینہ اتنا معروف ہے کہ لفظ مدینہ بھول ہی گیا کہ شہر کو کہتے ہیں، سٹی کو کہتے ہیں، اور جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں یہ تو اصل میں یثرب تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں جلوہ افروز ہوئے تو لوگوں نے محبت میں اس کو مدینہ النبی کہنا شروع کر دیا. پھر ہم نے اس کو محبت میں مدینہ المنورہ، نور سے بھرا ہوا کہنا شروع کر دیا. حالانکہ عربی زبان میں لفظ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، مدائن اسی سے آتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بہت کچھ جان جاتے ہیں. اللہ نے اپنے قرآن میں سورۃ توبہ کی آیت 128، جو بالکل اینڈ ہے سورۃ کا آلموسٹ، اس میں فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے اور تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے، یعنی ان کو تکلیف ہوتی ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اس سے خوبصورت کسی لیڈر کا تعارف نہیں ہو سکتا. لیڈر کے اندر جو خوبیاں ہوں وہ کیا ہے؟ درد بندی، جس کو کہتے ہیں ماں اور باپ والا پیار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں ادھر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرما دی، اگر آج امت مسلمہ میں یہ دو باتیں آ جائیں تو پوری دنیا میں اس پیغام کو پھیلانے میں ہمیں بہت مدد ملے. الحمدللہ اللہ نے آپ کو مجھے مسلمان گھر میں پیدا کیا، جب سے پیدا ہوئے ہوش سنبھالا، یہ سب کچھ دیکھتے رہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمارا پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ کتابوں میں رہ جاتا ہے. عملی زندگی آج امت مسلمہ کے ایک عمومی فرد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی مختلف ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے پیچھے فیکٹرز کے، یہ بات میں کبھی دیکھیں گے. آج ہم دیکھیں گے سیرت کو، اور سوال یہ ہے کہ سیرت کیوں پڑھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دنیا میں جس انسان پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ میں اور آپ نہیں کہتے، غیر مسلم بھی کہتے ہیں. ہمارا تو اللہ کے نبی کے ساتھ پیار ہی بہت ہے. امت مسلمہ کا شخص بے نمازی ہو سکتا ہے، بے روز ہو سکتا ہے، اللہ رحم کرے کسی برائی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکال سکتے. کسی نے کہا کہ شراب کے نشے میں چور شخص سے پوچھو، ڈو یو لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہے گا یس. یہ اللہ کے نبی کی محبت ہڈیوں میں، گوشت میں، خون میں ہے، لیکن عمل کے تقاضے نہیں ہیں. اس کی بھی وجہ ہے، اور وہ کہہ کہ ہمیں علم نہیں ملا. ہم یہاں عمرہ کرنے آتے ہیں، طواف پہ طواف، ایک عمرے پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، کچھ مسنون کچھ غیر مسنون، عمل محبت میں آ کے کرتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں. کیوں؟ ہمارے دل میں قرض ہے. لیکن جو یہاں سے لے کے جانے والی چیز ہوتی ہے اس میں کمی ہے. جاتے جاتے زمزم لے جاتے ہیں اور کچھ کھجوریں لے جاتے ہیں، اور اپنے ہی ملکوں کے بنے ہوئے جائے نماز لے جاتے ہیں واپس. علامہ اقبال نے بہت سال پہلے کہا تھا کہ کیا حرم کا تحفہ زمزم اور پانی کھجور کے سوا کچھ نہیں ہے؟ تمہیں وہاں سے اور کچھ نہیں ملتا. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں دل بدلے تھے. مکہ اور مدینہ کی اگر خوبیاں بیان کرنے لگ جاؤں تو گھنٹوں لگ جائیں، لیکن چونکہ آج مدنی دور ہے تو لفظ مدنی دور کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی دور کا آغاز ہجرت مدینہ سے ہوا، 622 عیسوی، کیونکہ ہجری تو اس وقت آئی نہیں. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا وقت تقریباً 622 ایئرز ہے. یثرب نام کا ایک شہر تھا، خانہ جنگی تھی. اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے، اصل میں یہ بھی ایک دادے کے دو بیٹے تھے. ایک بھائی کا نام اوس تھا، دوسرے کا خزرج تھا. وقت گزرنے کے ساتھ دونوں بھائیوں کے جو قبائل تھے ان میں جھگڑے شروع ہوئے، और इतनी लड़ाइयाँ हुई कि जिसको आप कहते हैं एक दूसरे के गले पकड़े हुए थे। 200 लड़ाइयों के इनके रिकॉर्ड मौजूद हैं। यहाँ तक लोगों ने कहा कि 200 साल तक जंगे बवास चलती रही, नस्लों की नस्लें कट गई, खून खराबा, और ऊपर से यहूद जो के वहाँ हिजरत करके आ चुके थे, उनके कबाइल भी थे, लड़ते थे, हर तरफ झगड़े थे। आप आज के दौर के मसाइल का हल चाहते हैं ना, हम सीरत की रोशनी में यही ढूंढने आते हैं ना, ढूंढना चाहिए। सीरत क्यों पढ़ें? ताकि आज के दौर के मसाइल को हल करें, आज के दौर के चैलेंजेस को फॉलो करें, और आज के दौर की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, यही है सीरत। लेकिन जब हम ये कुछ नहीं कर पाते तो नुकसान क्या होता है वो हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मक्का से मदीना बुला दिया, वो मक्की दौर में आप सुन लेते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद यसरब मदीनतुन नबी कहलाया, मदीनतुल मुनवरा कहलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ आने के बाद क्या किया, वो कहते हैं कि जादू की छड़ी थी जो घुमा दी। आज नॉन मुस्लिम लोग अल्लाह के नबी को जो टाइटल देते हैं वो क्या है, द मैन हू शोक द अर्थ, वो आदमी जिसने ज़मीन को हिला दिया, शेक करना होता है ना, हिलाना, उसी से शोक, जलजला बर्पा कर दिया। ना रिसोर्सेस, ना असबाब, ना हाल, ना हालात, इतना बड़ा इनकलाब। आज दुनिया में इस वक्त के अगर दौर को पीछे ले रहे, सबसे बड़ा इनकलाब फ्रांस का इनकलाब मारूफ है, जाके पढ़िए, नस्लों की नस्लें ख़त्म हो गई। और भी बहुत कुछ है, मैंने इस पे बहुत कुछ किया, पैगम्बर इनकलाब हमारी एक पूरी सीरीज है सीरत की, सुनिए, लगेगा कभी सीरत पढ़ी नहीं है। हत्ता के जंगें, सेकेंड वॉर, फर्स्ट वॉर, मारूफ है कि जब वो जंगें लोगों ने जीती और फतह का जश्न मनाने के लिए इंसान ही नहीं थे, इतना खून बहा, इतना कुछ हुआ, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या स्ट्रेटजीज इख्तियार की, क्या हिकमत अमलियाँ इख्तियार की, कि मदीना आने के वक्त जहाँ अल्लाह के नबी ईमान बचाने के लिए आए थे, लिख लीजिए, हिजरत मदीना जान बचाने के लिए नहीं थी, ईमान बचाने के लिए थी। जान तो अल्लाह ने बचानी होती है, उसके इख्तियार में, वल्लाहु यासीमुक मिनन्नास, ए नबी अल्लाह आपको लोगों से बचा लेगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वहाँ से निकाल कर मदीना वालों के हक में हुज्जत बनाया और मक्का वालों से निकाल कर उनके खिलाफ हुज्जत बनाया। रसूल किसी भी कौम में होता है ना, तो वहाँ ऑक्सीजन की तरह होता है, जब तक वो वहाँ रहता है वो बस्ती बस्ती रहती है। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने 3 वजूहात बताई हैं कि किसी जगह अल्लाह के अजाब ना आने की, उसमें एक वजह क्या है, वह अंत फी है, आप उधर हैं। 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, जुल्म व सितम हुए, हर थ्रेट हुआ, लेकिन अजाब नहीं आए, क्योंकि अंत फी है, रसूल बीच में था। आज भी किसी ईमान वाले का किसी बस्ती में मौजूद होना पूरी बस्ती को अल्लाह की पकड़ से बचाता रहता है। हर नबी की कौम में ये हुआ, जब अजाब आने होते थे नबियों को कहता था हिजरत कर जाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मदीना में आने के बाद, सोचा तो ये था कि सुख चैन की बांसुरी होगी और आराम से अल्लाह अल्लाह करेंगे, क्योंकि अल्लाह से जुड़ने के बाद हर बंदा यही सोचता है कि मुझे कोई गोशा आफियत मिल जाए, मैं पुरसकून होकर अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढूं, मुझे दुनिया में क्यों भेजा, मैं क्या कर सकती हूँ। और आप तो नबी थे, आपको तो अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मिशन दिया था, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुसहिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल फासिकून। 3 जगह यह आयत है, ये आखिरी लफ्ज़ों के फ़र्क से, क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दुनिया में इस्लाम को गालिब करने भेजा था। और मैं अपने और आपके लिए कहूँगी, और आप अपने बेटों को और अपने जवान बच्चों को ये पैगाम दीजिए, इस्लाम का मिजाज गलबे का है, जिसने इसको दबाया अल्लाह ने उन हाथों को अलग कर दिया। मिसाल तो बहुत ही आपको घरेलू लगे लेकिन सच्ची है, दही को जब लोग के लस्सी बनाते हैं तो उसके अंदर से मक्खन निकलता है, बटर। पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में लोग शुरू से घरों में दही बनाते थे, जब आप दूध को बलो के लस्सी बनाते हैं तो क्या होता है, छाछ नीचे मक्खन ऊपर, और ज़रा सी बर्फ़ डालते हैं तो फिर वो ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर ही होता जाता है। जब भी कोई उस मक्खन के पेड़े को नीचे दबाए वो दोबारा ऊपर आता है। मक्खन इस्लाम है, बाकी दुनिया छाछ है। अल्लाह ने अपनी बात मानने वालों को, अपने कलमा पढ़ने वालों को इस दुनिया में बहुत आला मुकाम दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब मक्का में मबूस किया तो अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश कि मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह ना सका कंद। आपकी कैफियत क्या थी जब आप मक्का छोड़कर मदीना आने पे मजबूर कर दिए गए? वो क्यों हुए वो मक्की दौर के आखिरी हिस्सों में हम सुन सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब मदीना बुलाए गए ये तमामे हुज्जत था। यहाँ थोड़ा सा आपके लिए एक और भी प्लस पॉइंट डाल दूँ। पिछले अम्बिया कराम जिनकी कौमों ने उनको झुठलाया, अल्लाह ने आसमान से कोई आफत भेजी ख़त्म कर दिया। हज़रत नूह की कौम पे आसमान और ज़मीन दोनों से पानी भेज दिया। हज़रत सालेह के दौर में आपको तक कड़क और बिजली और इस तरह के अजाब आए। कौम आद पे हवाएं छोड़ दी गईं। ये अल्लाह की तरफ से पकड़ थी, इसको समझ लीजिए। वो काम जो अल्लाह ने पिछले अम्बिया कराम की कौमों के साथ किया वही काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ अल्लाह के नबी और आपके सहाबा की तलवारों से लिया। एक सीरीज सबसे मुख्तसर है, उसका नाम है सीरत नबी उंगलियों पर। तो हमने फिंगर पॉइंट्स के साथ पूरे मक्की और मदनी दौर का खुलासा किया। आप अपनी सहूलत से वक्त के साथ साथ उसको सुनते रहिए। जो मेरी अपनी फेवरेट एक सीरीज है ना, उसका नाम क्या है, दुर्रे यतीम और सहरा कपूर। दुर्रे यतीम मक्की दौर का खुलासा है और सहरा का फूल मदनी दौर का खुलासा है, और ये दोनों हमारे ऐप पे मौजूद है, नूरुल कुरान ऐप। आपको एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। आज आप और मैं इस मदनी दौर के सफर में क्या करेंगे, हम गो थ्रू तो करेंगे खुलासे में। मैं तो यहाँ ये पूछती हूँ आपसे कि बताएं कि हम सीरत क्यों पढ़ें। हमें सीरत इसलिए पढ़नी चाहिए कि हमें पता चले अल्लाह के नबी किस रस्तों से निकले। ये जो लफ्ज़ है ना, सारा यसीर उ सईर, उर्दू में बोलते सैर व सियाहत, ये वही है सीरत, रास्ता। सीरत नबी, नबी का रास्ता, नबी का तरीका। तो बहरहाल अल्लाह के नबी की सीरत ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है। हमारे सलफ सालीन रोया करते थे जिनको सीरत पे कोई बात कहने सुनने को मिलती थी, हम तो आज इधर पता नहीं कैसे आके बैठ गए। आप कहते इस वक्त हम रोजे की जालियों को चूम रहे होते हैं। अरे यकीन से कह सकती हूँ ये आपका ज्यादा नफा वाला सौदा। हम जब उम्रे पे आते हैं और साथ इल्म नहीं लेते तो वो वैसे ही उम्रे होते हैं जो बेचारी हमारी कितनी नासमझ बहनों से हो रहे हैं। तो हमेशा जब भी आए अपने आप को रखें। मैं अक्सर आम लोगों को भी कहती हूँ कि सीरत की बुक साथ लेके आया करें, क्योंकि यहाँ आकर नबी सल्लम से मोहब्बत का एहसास होता है। तो सीरत को पढ़ना, उसका मकसद क्या है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब महसूस करें, अपने आप को उनसे मैच करें और उसके बाद गाइडलाइन लें। कोई बुरी बात नहीं है अगर आप सुनने वालों में से किसी ने आज तक अगर सीरत नहीं पढ़ी, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं किया है इस बारे में तो कोई बुरी बात नहीं है। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। तो आज आपका मेरा ये सफ़र नबी सल्लम से कुर्बत का सफ़र हो सकता है। तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में आपके साथ बात करूंगी। मदनी दौर किसको कहते हैं? तो याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने से शुरू होकर आपके विसाले नबवी तक के जो दौर है इसको आज हम मुसलमान मदनी दौर कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना में आते हैं। जब आप मदीना में आए तो बराहे रास्त आप मदीना में नहीं आए बल्कि पहले आप कुबा की तरफ गए जो आपका ननिहाल था। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ने लगे हैं ना, ये हमारे लिए भी सीखने की है। यानी जब मदीना की हिजरत की बात हम करते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं कि अल्लाह ने मक्का के बाद मदीना को क्यों चुना, इसकी क्या हैसियत थी या इसमें क्या फ़ायदा था। तो याद रखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मदीना के लोगों के दिलों में अल्लाह ने पहले से डाल दी थी। ऐसे इशारतन सिर्फ आपको अच्छा लगे इस सोच के साथ कि एक बड़ी प्यारी दुआ है कि रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकिन वाखरिजनी मुखरजा सिदकिन वजाल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, सूरह बनी इसराइल की आयत है। ये दुआ अल्लाह के नबी की ज़ुबान मुबारक पे थी जब आप हिजरत कर रहे थे। ज़रा सा तरतीब को देखे, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकिन। उलमा कहते हैं अक्ल से पूछे तो ये दुआ कैसे होनी चाहिए थी, रब्बी अखरिजनी मुखरज सिदकिन, पहले मुझे मक्का से सच्चाई के साथ निकाल, फिर वह अदखिलनी मुदखला सिदकिन। ज़ाहिर हमेशा हमारा पहले डिपार्चर होता है फिर अराइवल होती है ना, पहले हम कहीं से निकलते हैं फिर आते हैं, यहाँ तो उलट है। कभी आपने सोची ये बात, यहाँ दाखले की बात पहले है निकलने की बाद में, तो उसकी वजह आप लोग हैं मदीना वाले। उलमा कहते हैं कि नबी सल्लम मदीना में पहुँचते इससे पहले नबी की मोहब्बत अहले मदीना के दिल में पहुंच गई, इसलिए रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकिन पहले आया। ये बलागा की बातें हैं लेकिन हकीकत है, अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को मदीना की तरफ बुलाया और उनसे इधर काम लिया। 618 से शुरू करते हैं। 618 ईस्वी अहले यसरब के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, और इस जंग के नतीजे में उन लोगों ने अब्दुल्ला बिन उबई, जो कबीला खजरज से ताल्लुक़ रखता था, जो अमीर कबीला था, औस गरीब थे, ज़रा दबे हुए थे और खजरज के लोग अमीर थे, सब ने लड़े लड़के जो थक चुके थे ये फैसला किया कि चलो हम मिल जाते हैं, 2 लीडर तो चलते ही नहीं है, एक ही लीडर होगा, और अब्दुल्ला बिन उबई पे दोनों का इत्तफाक हो गया। इसको नॉमिनेट कर दिया गया था, इसकी रस्में ताजपोशी हो रही थी, आप कह लेंगे सेलिब्रेशन होनी थी अभी उसकी, और इतने में 622 ईस्वी, यानी ये ईयर सबसे अहम है आपके लिए, 622 ईस्वी में नबी सल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। कितने साल का फ़र्क है, 622 साल हज़रत ईसा से लेके नबी सल्लम के बीच में। उसके बाद 624 ईस्वी में ग़ज़वा बदर का मार्का हुआ, जो मुसलमानों के लिए यौमुल फुरक़ान बना, जिसमें अल्लाह ने हक और बातिल को खोल कर रख दिया। फिर 624 ही में यहूद का पहला कबीला, तीन थे उनके, फर्स्ट कबीला बनू कैन का, उसको मदीना से निकाल दिया गया। अब ज़रा आज के अखबार को जहन में लाकर ये खबरें सुनिए, या आज के न्यूज़ बुलेटिन या न्यूज़ चैनल्स को जहन में लाइए, इतनी जल्दी जल्दी दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही हैं। खैर आगे लिखिए, 625 यानी अगले साल, नेक्स्ट ईयर गज़वे ओहद हुआ, जिसमें मुसलमानों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा, जिसको आप कह सकते हैं कि न फतह हुई न शिकस्त हुई, ड्रॉ हो गया बात। मक्का वाले मदीना पे कब्ज़ा नहीं कर सके, लेकिन मुसलमानों को नुकसान पहुंचा गया, और वजह नबी की एक नाफरमानी थी। आप जब भी गुजरे ना, चंद सेकंड रुक के सोचा करें और कहा करें, अल्लाह जो उस वक़्त हो गई थी ख़त्म मुसलमानों से, अब हमें ना इसकी तौफीक देना। मैं आपको हर जंग का एक कोड वर्ड दे देती हूँ, ताकि आप इससे समझ जाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जंग के पीछे हिकमत क्या थी। ग़ज़वे बदर में अल्लाह ताला ने एक मैसेज आपको मुझे सिखाया बड़ा, कि कभी कभी प्लानिंग करके किए हुए काम इतने अच्छे नहीं होते जो अनप्लान काम हो जाते हैं। ग़ज़वे बदर एक बिल्कुल अचानक जंग थी, विदाउट प्लानिंग, सहाबा को पता भी नहीं था कि बाद में ये बदरी सहाबा वो बनेंगे कि जिनके बारे में अल्लाह आसमान से झांक के कह देगा, आज के बाद जो मर्जी कर लो लेकिन तुम्हें जन्नत मिलेगी। एक सिंपल कॉल थी, मुसलमानों के माल पे कब्ज़ा कर लिया था मक्का वालों ने, और वही माल का एक काफ़िला बनाकर वो लेकर मक्का से मदीना के रास्ते से गुजरते हुए मुल्क शाम से आ या जा रहे थे, बस इतनी सी बात थी। कहा चलो रास्ता रोक के हम इनसे अपना सामान ले लेते हैं, लोगों ने इतना अहमियत भी ना दिया। और याद रखिए कि जब नबी सल्लम मक्का की तरफ आए, तो रिवायात जरिए जमा करें ना, तो तकरीबन 1,000 लोग थे टोटल उस वक्त मुसलमानों के, औरतों और बच्चों को निकाल दें तो सिर्फ 400-500 मर्द बनते हैं, और उसमें से भी अगर वो कह दें कि जो 7 नबी के ले आए थे मक्का से, वो 100 के अराउंड थे, 100 हेयर और देयर। थोड़े से इसबाब के साथ अल्लाह काम ले लेता है। हम आज तक इसबाब को रो रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा अपने इसबाब को रोती है, ये नहीं वो नहीं ये नहीं, आप खड़े हो जाइए, बाकी कमी अल्लाह पूरी करेगा। देखिए आप 1 लिखिए अपने नोट्स में, उसके बाद 1 0 लगाएं, कितने बन गए, 10। अब एक और 0 लगाएं, 100। एक और लगाएं, 1,000। एक और लगाएं, 10,000। आप खड़े रहें, 1 खड़ा रहे, जब 100 लगते जाएंगे तो 0 मिलियंस में बदल जाएगा। अब एक सेकंड के लिए इस 1 को गिरा दें, 0, जैसे आप ट्रिलियंस डॉलर को मल्टीप्लाई कर दें 0 से, तो 0। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये लिख लें, जब तक बंदा अल्लाह के रास्ते में खड़ा रहता है ना, इन लजीन कालू रब्बुना अल्लाह सुमस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। आप अकेले खड़े होते हैं, मकसद की सच्चाई लेकर आप खड़े होते हैं, ये काम करना है, ये काम होना है, आप अकेले खड़े हैं। लोग कहेंगे ये कैसे होगा, इट्स इम्पॉसिबल, हाउ कैन, रिसोर्सेज के आप खड़े रहिए। अल्लाह देखता है कि बंदा बड़ा जमा हुआ है, अल्लाह अपनी मदद का एक ज़ीरो लगाता है आपको। जब अल्लाह का एक ज़ीरो लगता है तो आप कितने हो गए, 10 टाइम हो गए, आप फिर भी खड़े हैं और खड़े हैं डटे हुए, अल्लाह एक और ज़ीरो, क्योंकि अल्लाह जो भी आपकी मेरी मदद करेगा ना किसी भी काम में, तो वो क्या होगी, अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह की कुदरत के मुकाबले में तो सिफर है वो। अल्लाह के ज़ीरो लगते रहते हैं। और आपका मेरा मामला पता क्या होता है, तनख्वाह चले थे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। इस्लाम की तरक्की का यही राज है। ग़ज़वे बदर ने आपको ये सिखाया कि तुम हालात करो ना, ना रो, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करो। अल्लाह का नबी कह रहा ना कि निकल पड़ो, तो निकल पड़ो। 360 लोग निकले, सिर्फ 360 कितने होंगे, चले, आपने कहा तो चले। ग़ज़वे बदर आपको सिखा कर गई कि समय ना हुआ आना, अकल नहीं इस्तेमाल करो। जब तुम अपना लीडर किसी को मानते हो तो फिर उसकी बात पे यकीन भी तो करो, फिर अपनी मर्जी, अपने दिमाग, अपनी कुछ। ग़ज़वे बदर आपको ये सबक सिखा गई कि वमा तशाउन इल्ला यशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुबहाना तआला ने ऐसी फतह दी उस जंग में, जाकर आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जाकर पढ़िए, दे आर एस्टोनिश्ड, दे आर अमेज्ड, हैरान है, कहते हाउ कम, ये हुआ कैसे, कोई तो बात होगी। क्योंकि जो लोग फिगर एंड फैक्ट्स ही जमा करते रहते हैं ना अकाउंटेंट की तरह, आदादो शुमार, उनसे काम नहीं होता। अल्लाह काम लेता है तो ईमान वालों से लेता है। आज उम्मत मुस्लिमा 2 बिलियन, अराउंड 2 बिलियन मुस्लिम्स हैं, थोड़े। नबी ने ये बदर के मैदान में जाकर आपको सिखा दिया कि जो है लेके चल पड़ो, बाकी कमी अल्लाह पूरी कर देगा। देखिए आपका बच्चा, उसको शौक है बहुत कोई गैजेट लेने चले, खिलौना आप बच्चे नहीं लेते, आप बच्चों को फ़ोन चाहिए होते हैं या टैबलेट्स चाहिए होती हैं या ABC, आप कहते हैं अपनी पॉकेट मनी में से जमा कीजिए, ले लीजिए, मैं तो नहीं लेके दे रही। अब आप देख रहे हैं बच्चा रोज़ की पॉकेट मनी जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ रहा है। आप उसको सैंडविच के लिए पैसे देते हो, कहते नहीं मामा ये नहीं, मैं इसमें पैसे जोड़ूंगा। अब उसने मे भी 40-50 रियाल जमा कर लिए। एक दिन आपको अपने बच्चे पे बड़ा प्यार आता है, आप उसको उस इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे ले जाती हैं, क्या देखना है, वो देखा वो तो 200 रियाल का, बच्चे के पास 60 रियाल है अभी। तो बच्चा कहते हैं मॉम आई डोंट हैव एनफ मनी, यू टोल्ड मी कि आई हैव टू बाय बाय माई सेल्फ। तो आप कहते नो वरीज बेटा, आप दीजिए ये। वो बच्चा आपने वो गले में से टूटी फूटी मनी जो निकलती है वो कॉइन्स निकाले, वो 60 रियाल हो गए। उसके बाद आप कहते हैं कि ये 60 हुए, ओके टेक माई कार्ड, बाकी मेरे से ले लो। अल्लाह ये करता है, माएँ अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। ग़ज़वे बदर आपको मुझे सिखाती है कि ट्राई योर बेस्ट फर्स्ट, लीव द रेस्ट टू अल्लाह ताला। हम दूसरों के सहारे, वो नहीं वो नहीं मैं नहीं, नो। तो ग़ज़वे बदर हुई, लेकिन ग़ज़वे बदर ये बता गई कि लोगों पे नजरें ना रखो, जिंदगी में कामयाब होना है तो डोंट लुक एट पीपल, फला अमीर, फला गौर, पैसे वाला, वो फला ऐसा, उसके बड़े रिसोर्सेज हैं, नेवर सी दिस। किधर देखिए, ऊपर देखिए, क्योंकि ऊपर देख लिया तो बीच में सारे उसके खुद ही आ जाएंगे। नबी खड़े हुए, सहाबा मिलते गए, चलिए ग़ज़वे बदर के इतने मैसेज काफ़ी हैं, हैं तो बहुत सारे, लेकिन आगे चलते हैं। तो ग़ज़वे बनू कैन का जो होता है 624 में, यहूद निकाल दिए गए। सदियों के वहाँ जमे जमाए लोग, जिसको आज की ज़बान में के दे हैड देयर कॉलोनीज देयर, उन्होंने वहाँ अपनी जड़ें पकड़ी हुई थी, उसके अंदर 1/3 तो नुकसान हो गया। अब इसकी फिगर्स एंड फैक्ट्स आप सुनिएगा जो आपको सीरीज दे रहे हैं उनमें से। लेकिन ग़ज़वे बनू कैन का आपको एक चीज़ सिखा गई, इस दुनिया में बातिल, बातिल मीन शर, फॉल्सहुड, झूठ को जगह नहीं मिलेगी। मेरे अंदर अगर खोट है, मैं एक दिन ज़रूर उखेड़ दी जाऊंगी। झूठी से ज़्यादा दिन नहीं रहती, झूठा प्यार भी ज़्यादा दिन नहीं रहता। झूठ पे लोगों को आप जमा नहीं कर सकते, झूठी इज्जत भी नहीं करा सकते आप। और आप देखिए 100 दिन चोर के 1 दिन चाका, जो जुल्म करेगा 1 दिन उखाड़ दिया जाएगा। आगे चलते हैं, 625 ईस्वी में ग़ज़वे उहद हुआ। ये है वो जिसको मैंने ज़िंदगी में पल्ले से बांधा हुआ है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं आप में आप गवाही दे सकते हैं। जब हम सूरत आले इमरान में वइज़ गदउत मिन अहलिका से बात शुरू करके फिर अगले कई रुकू गज़वे उहद पढ़ते हैं, दिल ही नहीं करता छोड़ने को। इवन दौरे कुरान जब होता है तो जब इस पारे में इस जगह पे हम आते हैं तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता छोड़ने को, फोर्थ पारे में ये कहानी आती है। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा को गज़वे उहद से मॉरल्स एंड लेसन्स लेने की ज़रूरत है। नबी की थोड़ी सी नाफरमानी जीती हुई फतह को शिकस्त में बदल देती है। और दूसरी बात है माल की मोहब्बत। अल्लाह कहता है तुम्हें थोड़ा सा माल क्या दिखा, तुम तो भिदक ही गए। और गज़वे उहद ने बता दिया कि नबी भी कुछ नहीं कर सकता अगर अल्लाह ना करने की इजाज़त है। वो जंग थी कि जीती हुई जंग हार में बदल गई। वो जगह जहाँ दर्रा छोड़ दिया था ना, वो जगह पे आज मस्जिद है। इधर अभी भी आप जाके बाहर देखें तो छोटी सी मस्जिद है नीचे। आज मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई गाइडलाइन पे अमल करने की ज़रूरत है। आप और मैं जितना अल्लाह के नबी के सिखाए हुए तरीक़ों पे अमल करेंगे इंशाल्लाह खैर ही खैर होगी। गज़वे उहद अगर आज के तनाजर में देखी जाए, कुरान 3-4 दफ़ा एक ही बात कहते हैं, वान तुम अलऊन, तुम ही बुलंद हो, शर्त एक है, इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम ईमान वाले हो ना तो डोंट वरी, पूरी दुनिया सारी इकट्ठी हो जाए तुम्हें कुछ नहीं करेगी बिगाड़ेगी, तुम नबी की बात तो मानो। लीडरशिप की अहमियत, फॉलो इट। और वाकई जंग जीत गए थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ 50 लोग नॉमिनेट कर दिए गए। अल्लाह के नबी ने कहा कि हारो के शिकस्त हो फतह हो के शिकस्त, तुमने जगह नहीं छोड़नी। तुम देखो परिंदे हमारे गोश्त नोच रहे हैं, तुमने जगह नहीं छोड़नी। लेकिन वो माल जब माले गनीमत दिखा तो बहुत सारे लोग डिसिप्लिन छोड़ गए। तो गज़वे उहद का एक और बहुत बड़ा लेसन जो मैं ज़रूर चाहूँगी इस वक्त के मुसलमानों को सामने रखते हुए, वो है बी डिसिप्लिन्ड, बी ऑर्गेनाइज्ड। हम जब किसी यूरोप के मुल्क से फ्लाइट में एंटर होते हैं ना, हम ही होते हैं सारे, सऊदीया फ्लाइट है तो सारे मुस्लिम ही होते हैं। वहाँ हमारा गेटअप, हमारा बताना, उठना, चलना, और अपने किसी मुसलमान मुल्क में जब माशाल्लाह अराइवल पे होते हैं तो हमारा एटीट्यूड ही बदल चुका होता है। वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड हेयर बट वी आर डिसिप्लिन्ड देयर। आप अंधेरे में, रात के अंधेरे में कोई रेड लाइट क्रॉस कर जाए, आपको नहीं पता चलेगा, और अकल भी नहीं मानती। इतने खुले खुले रोड हैं ह्यूस्टन के खास तौर पे, और टेक्सास में अगर आप देखें ना, चौड़े चौड़े रोड्स हैं और वहाँ स्टॉप साइंस हैं। आपको रुकना है, इधर देखना है, इधर देखना है, फिर इधर देख के फिर चलना है। ऐसे ही लगता है, तकल्लुफ है ही कोई नहीं, गाड़ी आनी कहाँ से है। बट यू हैव टू। रात 2-2 बजे भी सफ़र किए हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने कराए हैं। मैं इनको कहती थी यार मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा, लेकिन वो उनके खमीर में है कि आपको रुकना है। कोई नहीं देख रहा लेकिन आपको बेल्ट बांधनी है। हमारे मुल्कों में वही गाड़ियाँ आती हैं जो टुन 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 करती हैं सीट बेल्ट ना बांधने पे, हमारे लोग पहले सीट बेल्ट बांध के फिर ऊपर बैठ जाते हैं। शेम फॉर मी, हम डिसिप्लिन नहीं है। शर्म आती है, शर्म आती है। गज़वे उहद ने सिखाया था कि बी डिसिप्लिन, बी ऑर्गेनाइज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मार्का 625 में बनू नज़ीर की जलावतनी, यहूद का जो सेकंड स्पॉट था मदीना में वो भी ख़त्म और जड़ से उखाड़ दिया। क्या वो सरकमस्टांसिस थे, वो पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैंने किरदार समझा, और ही इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, लाइक आपके भी। मुझे कोई कहता है आपने किससे सीखा, ये कैसे हो गया, नूरुल कुरान इतना ग्रो कैसे कर गया, ये क्या वो क्या, आप कैसे ग्रो करते हैं, तो मैं कहती हूँ मेरे पास इतना प्यारा रोल मॉडल है। सीरत ना पढ़ी होती तो मुझे भी शायद दसियों बीसियों जगह पे गलती खानी पड़ती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे बनू नज़ीर के नाते से आपको बता दिया, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी मिसचीफ, जो मर्जी कर लो, जब गलत है तो गलत है, असूलों की जंग। ही वॉज मैन ऑफ प्रिंसिपल। हम कहते हैं सोके हो गया, वो अपना है, वो भाई का है, वो उसकी किसी ने फोन कर दिया है। आज हमारा सारा सिस्टम फ्लॉप है क्योंकि हम इधर से उधर, उधर से इधर। आगे चलिए, जो सबसे अमेजिंग चीज़ है और वो क्या है, गज़वे अहज़ाब जहाँ लड़ी गई थी 627। हर साल 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 के वक्फे से इतने बड़े मार्के, और ये जितनी जंगे हैं ना इनको मलाहमात नबी कहते हैं। आप कहेंगे अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में इतनी जंगे क्यों हुई, इसलिए कि पिछली कौमों को बिजली से, तूफानों से तबाह कर दिया, मुशरिकीने मक्का को, जो नबी के फेस टू फेस दुश्मन थे मदीना में भी और मक्का में भी, उनको आपकी तलवारों के जरिए स्टेप बाय स्टेप ख़त्म किया गया। वो काम जो पिछले नबियों की कौमों ने नबियों को झुठलाया, और अल्लाह ने ज़मीनी और आसमानी आफतों से वो काम लिया, अपनी नेचुरल फोर्सेस यूज़ की, वलिल्लाहि जुनूदुस समावाती वल, वही काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से आपकी तलवारों के जरिए लिया गया, क्योंकि आप आखिरी नबी थे और आपकी उम्मत बड़ी थी, और आपके दुश्मन जो थे वो पहली कौमों के दुश्मनों की नस्बत मुख्तलिफ थे। तो लिहाजा जो सामने आया उसको तलवार दिखाई कि जो मुसलमान हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह, और अदरवाइज दूसरी तरफ ले गए। ग़ज़वे अहज़ाब क्या है? मैं आपके सिर्फ होश गुम करने के लिए, लेकिन आज के दौर के 10-12 नाम लीजिए, वो मुल्क, वो हुकूमतें, वो बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो दुनिया में इस वक्त मशहूर हैं, वो सुपर पावर्स हैं, वो कंट्रीज हैं, वो कोई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे मिलकर एक साइन करें, जिसको आप कहते हैं MOD, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसमें एक ही लफ्ज़ लिखी हो कि आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, और ये दुनिया में आज जितने 100+ मुल्क हैं ना, सारे साइन करें कि हम सब मिलकर, आज ये 24 है, चले 25 का एजेंडा बनाते हैं, हमने दुनिया के हर कोने में खड़े बैठे लेटे मुसलमान को कत्ल करना है, हमारा क्या हाल होगा? आप अपने मुल्कों में ले लें, बॉर्डर है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, पाकिस्तान को ख़तरा पड़ जाएगा तो इंडिया से, दूसरी तरफ पड़ जाएगा तो चाइना से, समझ गए ना? आपके इस मुल्क के इर्द गिर्द कितने होंगे, क्या हाल होगा उस वक्त हमारा, सारे जमा होके कि एक दफ़ा तो मिल के सारे इनको ख़त्म करके, तो फिर दैट इज़ आवर कॉमन कॉज। और यहाँ वो हदीस याद रखे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुर्बे कियामत गैर मुस्लिम हुक्मरान एक दूसरे को दावत देंगे, जैसे तुम खाने की दावत देते हो कि आओ मिलकर मुसलमानों को ख़त्म करें। तो सहाबा का देखिए माइंडसेट, फौरन पूछा अल्लाह के नबी, क्या हम उस वक्त थोड़े होंगे? सहाबा ये नहीं सोचते थे कि हमारा ईमान थोड़ा होगा या क्या होगा, तो हम थोड़े हो जाएंगे। तो फरमाए, थोड़े तो नहीं हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बीमारी आ जाएगी, और वो बीमारी क्या है? वहन, वो मल वहन, वहन क्या है? हुब दुनिया व कराहियतुल मौत। जब मुसलमान में दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत आएगी, तो उस वक़्त दुश्मनों के हौसले खुल जाएंगे। जब मुसलमान को भी मरने से उतना ही डर लगेगा जितना किसी गैर मुस्लिम को लगे, और मुसलमान भी जीने का इतना ही हरीस हो जाएगा जितना गैर मुस्लिम है, और माफ़ कीजिए, जब मुसलमान और गैर मुस्लिम के सुबह उठकर घर से निकलकर घर आने तक का मकसद और पर्पज़ एक ही हो जाएगा, और वो क्या है? अलखाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमुन। आज आप अपनी नस्लों का रोना क्यों रोएं? आप क्यों परेशान हैं अपने बच्चों के लिए? माफ़ कीजिए, और आप सऊदीया में रहने वाले यू आर ब्लेस्ड पीपल, कभी इस मुल्क को छोड़ के ना जाइएगा, कभी इसके साथ गद्दारी ना कीजिएगा, यू आर इन जन्ना, और जो दूर की जन्नतें लोगों को दिखती हैं, कभी आकर अकेले में पूछिएगा, हज़ारों गम है इस सीने में। आउट ऑफ 3 एक बच्चा इस्लाम छोड़ रहा है, और आउट ऑफ 6 एक बच्चा खुदकुशी की सुसाइड कर रहा है, गलत तो नहीं मैंने कहा? ये 5 माह पहले के फिगर्स हैं अमेरिका के। हर बंदी मेरे कान में आके कह रही है टॉक अबाउट सुसाइड, टॉक अबाउट डिप्रेशन, ये ट्रैंकलाइजर्स के बारे में, और ये जो बच्चे नशा मेज हुआते हैं इनकी बात करो, और जब मैं यूरोप की कहानियाँ सुनाऊँ तो यू विल नॉट बिलीव इट। हर मुल्क अपना गम है, अमेरिका कनाडा चूंकि मोर फेमस है, वहाँ मुसलमान बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के चैलेंजेस बड़े हैं, और यूरोप तो सोया हुआ है, अभी अंधेरों में है, उसके लिए अभी और नोहा करना पड़ेगा, वहाँ तो अब मत मार दो, इन बच्चों की नस्लें ख़त्म कर दो। आप खुशियाँ मनाते हैं बेटा हुआ है, माशाल्लाह बेटा हुआ, लड़का हुआ, बॉय हुआ, अब नहीं होगा। वो लड़का या लड़की 7 साल की उम्र का होकर डिसाइड करेगा एम आई बॉय और गर्ल, ये पास हो चुके हैं लॉज यूरोप के कई मुल्कों में, इनसे पूछ ली, मेरे साथ यूरोप के लोग भी मौजूद हैं, गलत कहूँ तो आप बाद में इनसे पूछिए। यू कैंट से एनी वन के यू आर अ बॉय और गर्ल, वो पिंक और ब्लू का तस्वर ख़त्म हो गया, आप नहीं गुब्बारे खरीदे आप दो रंगों के, अब बच्चे डिसाइड करेंगे। और ये इससे बढ़ के चलिए, ह्यूमन डॉग, कैलिफोर्निया की रोड्स पे ह्यूमन डॉग्स फिर रहे हैं, इंसान नुमा कुत्ते, कॉस्ट्यूम्स मिल रहे हैं कुत्तों के, वो पहनकर अंदर इंसान होते हैं लेकिन वो बाहर से डॉग का एक फीचर बन के दिखा रहे हैं लोगों को, टांग उठाकर वैसे ही यूरिनेट करते हैं जैसे जानवर करता है, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. اپنے اس ملک کو بچا لیں، مسلمانوں کی آئیڈینٹیٹی کو بچا لیں. اب آپ کہیں گے پھر جو وہاں رہ رہے ہیں وہ کیا، وہ کیا کرے؟ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پچھلے 2020 جتنے بھی سال ہوئے ہیں، میں نے جتنا امریکہ اور کینیڈا میں اپنے اسلام کے اور دین کے کام کو انجوائے کیا، دیر از نو کمپیریزن آف دیٹ. ایسے لگتا ہے جیسے اپنے گھر میں پھر رہے ہیں. جو مسجد مسلمانوں کی، میرا خیال ہے کہ یہ یو اے ای اور سعودیہ کے بعد سب سے بڑی خوبصورت مسجدیں امریکہ کینیڈا میں ہیں. پیپل لو ٹو ڈونیٹ. آپ کو دین کا کام کرنا ہے، اللہ کی نظر ہے ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت. آج تک کبھی پن بھی کسی نے نہیں لگائی کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. میسیج بھی بڑا کلیئر ہے، پلین صاف ستھرا میسیج ہے. نہ لوگوں کو ڈسکس کیا، نہ حکومتوں کو کیا، نہ سسٹم کو کیا. اپنا ہی رونا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. جو مسلمان بن کے ان ملکوں میں جی رہے ہیں ماشاء اللہ، دے آر انجوائنگ. میں جب فرسٹ ٹائم امریکہ سے ادھر آئی تھی اور عمرے کے بعد میں واپس چلی گئی، تو میں کیا سوچ رہی تھی، الحمدللہ یہاں بھی بہت مزہ آیا، لیکن شکر ہے اللہ کا میں وہاں بھی اپنے کام پہ ہوں. ہمیں تو نہیں فرق لگتا مکہ مدینہ میں اور اپنے اپنے ملکوں میں، جہاں ہم بیٹھ کر اپنے دین کے کام پہ لگے ہمیں مزہ آ رہا. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا. اب جو بات میں کہنے لگی اس کو سوچیے، میں نے غزوہ احزاب پہ اتنی باتیں بولی. غزوہ احزاب سکھا گئی ہے کہ ساری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے، وہ آپ کا بال کبھی کا نہیں کر سکتے. نمبر ایک، اگر اللہ نہ چاہے، اور نمبر دو، اللہ کب نہیں چاہتا؟ جب بندہ خود انتم الاعلون ان کنتم مومنین کے درجے پہ ہوتا ہے. آپ مسلمان بن کے جیے، دنیا کے جس خطے میں بھی رہتے ہیں نا، مسلمان بن کے جیے. مکہ میں رہ کر، مدینہ میں رہ کر اگر آپ مسلمان بن کے نہیں جئیں گے، وہ سارے فتنے ادھر بھی آئیں گے آپ کے پاس. اگر اس ملک میں رہ کر جہاں حرمین شریفین ہیں ہمارے پاس، اگر آج کے ماں باپ مادہ پرست ہو گئے، میٹیریلسٹک ہو گئے، اپنے بچوں کو اسلام سے دور کر کے صرف دنیا کی محبت کا عادی کر رہے، تو یاد رکھیں یہاں بھی آپ سیکیور نہیں ہیں. میں نے دو آئیڈیل سچویشنز دی ہیں آپ کو. اس کا یہ نہیں مطلب کہ سارے یہاں اچھے ہیں اور سارے وہاں بچے خراب ہیں. وہاں کے اچھے بچوں جیسا بھی کوئی نہیں ہے اور وہاں کے خراب بچوں جیسا بھی کوئی نہیں ہے. سیم از ہیئر. آپ لگژریس لائف کے ادھک نہ کیجیے اپنے بچوں کو. پودے کو بہت زیادہ پانی دے دیتے ہیں نا، پھر بھی گل جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کے بہت لاڈ دیکھ رہے ہیں، ہم کمفرٹ زون میں لے گئے. ویسٹ میں ایک بچہ 16 سال کا ہوتا ہے نا، تو ماں باپ کہتے ہیں چلو اپنا پاکٹ منی خود کماؤ، سائڈ کی جابس ہیں، شام کی جاب ہے، ویکینڈ جاب ہے، سمر جابس ہیں. بچے کر کرا کے تھوڑے بہت پیسے لے کے اپنا منتھلی خرچہ نکال لیتے ہیں. ہمارے ابا جی ماشاء اللہ زندہ رہے، اللہ سلامت رکھے سارے اباؤں کو، 4-4 کروڑ روپے کا ولیمہ کرتے ہیں ابا جی. اور بچے کی جیب میں ہو سکتا ہے 40,000 بھی نہ ہو بیوی کو دینے کے لیے. اگر ابا اما پیچھے ہٹ جائیں تو ہمارے بچے تو نکاح کے چھوارے بھی نہیں خرید سکتے. ڈونٹ گیو دیم ٹو مچ پلیز. دولت دی اللہ نے، اس کو بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ لگائیے. آپ سعودیہ میں رہتے ہیں، عرب میں رہتے ہیں، آپ کی عربی فر فر ہو. کیوں عربی سیکھے؟ اس لیے کہ میرا قرآن عربی میں ہے. صبح بھی نماز ہوئی، ابھی جب بھی شام مغرب میں امام صاحب پڑھتے ہیں کتنا سمجھ آتا ہے. غیر عربوں کو سمجھ آ جائے، عربیوں کو نہ سمجھ آئے تو بات نہیں ہے. تو قرآن کو، عربی کو سوچے. انلائٹن دا ہارٹس ود دا نور آف القرآن. اس قرآن کے ساتھ دلوں کو جوڑیے. تو غزوہ خندق پہ سارے ہی آگے تھے، ٹریٹی سائن ہوئے، گھر گھر جا کر ابو سفیان جو سو کے اسلام پہ نہیں تھے، انہوں نے میسج کنوے کیا، تم بھی نکلو، تم بھی نکلو. اچھا آپس کی دشمنیاں ختم کر دی. اچھا نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم ہمارے ساتھ ملو. ادھر یہود مدینہ اور ادھر مکہ والے سب مل کے، جیسے وہ شادی کے دعوت نامے نہیں پہلے دور میں لوگ گھروں میں دینے جاتے تھے، سدے دیتے تھے، تم بھی آؤ تم بھی آؤ، اس طرح سب کو بلایا، تم سب نے آنا. اب میرے پیارے نبی، یعنی میرے جو دل کی کیفیت 2 دن سے ہے نا، میں وہ بتا نہیں سکتی. سویا نہیں جا رہا، کیونکہ جو روم ہے نا اس کے بالکل سامنے مسجد ہے. یعنی مجھے کل رات سمجھ آیا کہ امام مالک مدینہ میں جوتا کیوں نہیں تھے پہنتے. دل میں جب پیار اور محبت آتا ہے نا کسی کے لیے، تو کہنا نہیں پڑتا. یہ وہی مدینہ ہے جہاں اللہ کے نبی تھے. آج ان کا جسد مبارک تو موجود ہے نا، ہمارا ایمان ہے. آپ کا وجود ادھر ہے، اس کی برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ برزخی زندگی کیا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہم کر سکتے. اور نبی تو بچے تھے، تو حلیمہ صادقہ کے گھر میں ان کی برکتیں آ گئی. ان کی وہ جو اونٹنی تھی، گدی تھی، اس پہ سوار ہوتے ہی فر فر بھاگنے لگ گئی، تھنوں میں دودھ آ گیا، بکری کے تھن بھر گئے. یہ مکی دور میں آپ سن لیں. وہ نبی بچہ تھا تو اس کی برکت تھی، वो नबी मक्का में था तो बरकत इतनी थी कि वहाँ से अल्लाह ने अजाब को रोके रखा, और ये मदीना के जो मैंने आपको भी 4-5 साल बताए हैं ना, ये नबी की बरकतें थी। एक अच्छा लीडर मिल जाए, दुआ करें। इस वक्त मत मुसलमान को इस लीडर्स की ज़रूरत है, फॉलोअर्स तो बहुत है, चलने के लिए तो बहुत तैयार है, चलाने वाला कोई मिल जाए। तो खंदक की जंग जब जे खबर नबी पे हुई, मैं सोचती ना तो मेरा दिल नबी की मोहब्बत में ऐसे पसीज जाता है। क्या दिल पे चोट पड़ी होगी, मैं करूँ तो क्या करूँ। आज सोचिए ना, सारे ही आ गए आपके खिलाफ हमला करने, तो क्या करेंगे आप। आखिर अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत देनी होती है। सलमान फारसी, गैर अरब, नॉन अरब, फारस से आया हुआ एक शख्स, पर्शियन, मशवरा मांगते थे। लीडर्स को मशवरा मानना वाला होना चाहिए। आप कैसे हर बात अपनी 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 करते रहते हैं। आप नहीं है सही, वन मैन शो कुछ नहीं होता, टीम वर्क कीजिए। खैर, काला के नबी, हमारे पास एक टेक्निक है, और वो क्या है कि हम अपने और दुश्मन के बीच में खंदक खोद देते हैं ताकि दुश्मनी दूर हो। अल्लाह के नबी को ये बात इतनी पसंद आई, और आप देखिए अल्लाह ने मदीना शहर को कैसे पहाड़ों के साथ पीछे कवर किया हुआ है। सिर्फ आगे एक बाड़ बना दो, पीछे पत पहाड़ों को वो कूद ही नहीं सकते। याद रखिए, मुसलमानों को किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। जब इस्लाम आता है ना, तो इस्लामिक फोर्सेस वो नहीं होती जो आज का कॉन्सेप्ट है। हर फर्द ही सिपाही होता है, हर कार्य कुरान ही असल में सिपाही था। नबी की स्टैंडिंग आर्मी थी असहाबे सुफा, जो कुरान पढ़ते हैं ना वो ही फौजी होते हैं। कुरान ही तो बंदे के अंदर हथल बुथल कर देता है। तो खैर, बहरहाल सलमान फारसी के मशवरे पे अमल हुआ, सहाबा ने पेट पे पत्थर बांध के खंदक खोदी। ये मक्का मदीना की गर्मी आप देख लीजिए, और इतनी चौड़ी के दुश्मन फलांग ना सके, और इतनी गहरी के नीचे से ना गुजर सके। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर बांधे पे, एक नहीं दो गज़वाए अहज़ाब। आपको मुझे चंद मैसेज देती है। पहली बात है कि पेट पे पत्थर बांधने पड़े तो बांधिए। हम पेट पे बेल्ट बांधते हैं ताकि पेट अंदर चला जाए, हम पत्थर बांधेंगे ताकि पेट अंदर चला जाए। उन्होंने पत्थर बांधे कि भूख है ना, तकलीफ ना हो। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे अहज़ाब से ये बात सिखा दी, यूज़ द न्यू टैक्टिक्स, नई स्ट्रेटजीज अपनाओ। मक्का वालों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब होगा, वरना वो अपने साथ कोई सीढ़ियाँ सूढ़ियाँ ले आते, कोई जंपिंग जैक, कोई फोम के गद्दे ले आते, डिचिस में फेंकेंगे, फिर गुजरेंगे, भागेंगे, कुछ करेंगे, कुछ जंप करेंगे। वो तो धुंधलाते हुए आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं आगे परेशान, और रुक गए। जो आ रहा है, जो आगे, आप सोचे ना गाड़ी में, और आगे बिल्कुल एक खड्डा हो तो खड़े हो जाएंगे। और अल्लाह ने मुसलमानों का एक खून नहीं बहाने दिया। ज़रा अम्यूज़ कीजिए, इट्स वेरी अम्यूजिंग। वो आपको नीस्त नाबूद करने आए हैं, अल्लाह कहते मैं एक खून नहीं बहाऊंगा। सिर्फ दो जगह से हल्की सी खंदक पार करने की कोशिश की कुछ दुश्मनों ने, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो और उनके साथियों ने उनको तीर दिखाए, भाग गए। 1 महीने का मुहासरा, कोल्ड वॉर थी ये, कोल्ड वॉर। गजब खंदक क्या थी ये, देखिए, मसल्स की जंग थी, आसाब की जंग थी, खौफ था, बच्चे और औरतें अंदर और सारे मर्द फौजी बन के बाहर पहरे दे रहे हैं। मुसलमान तो चलो अपने घर में ही थे ना, और दुश्मन बाहर था। वो कोई इतना सामान थोड़ी साथ लेकर आए थे, स्नैक्स, ट्रैवल स्नैक्स जैसे हम लेके जाते हैं माशाल्लाह, रस्ते के स्नैक्स। और इत्तफाक हुआ था झूठ पे, इसलिए ज्यादा देर ना चला। कैसे चलता, खत्म हो गया, फूट पड़ गई, खाना जंगी हो गई, फूट पड़ी, लड़ लुड़ के थोड़े दिन बाद चले गए, उनकी हांडियां उलट गई। और रही सही कसर, अल्लाह ने हवाएं भेजी, ठंडी या हवाएं, यानी तबूक अगर गर्मियों की जंग थी ना, तो अहज़ाब सर्दियों की जंग थी। अल्लाह ने सिखा दिया इस दीन के तकाजों में गर्मी सर्दी को ना देखो। सूरत अल अहज़ाब की तफसीर सुन लें, सिर्फ इसी सूरत की सुन लें, जो यहाँ बैठ कर फीलिंग आती है वो बाहर नहीं आती। तो बहरहाल ग़ज़वे अहज़ाब में मुसलमानों का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और मुसलमान जीत गए। 5 हिजरी थी, ज़ीकत का महीना था, और ये लीडरशिप चाहिए आज। और इसे एक और बात भी लिख लें, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ग़ज़वे अहज़ाब ने आपको एक और चीज़ भी सिखा दी कि दीन के काम साथ साथ, फितने फैलाने साथ साथ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन से नहीं हटे। आपकी ज़िंदगी के निजी कई वाक़यात ग़ज़वे अहज़ाब के दौरान हुए, आपके निकाह हुए, हमारे तो कोई ख़ानदान में एक फौत हो जाए तो शादियाँ डिले हो जाती हैं, इधर एक दिन खुशी है तो एक दिन गम है। ना खुशियों ने मकसद से रोका, ना गमों ने मकसद से रोका। अल्लाह आज भी सलमान फारसी ही को आपके सामने भेज देगा, शर्त एक है कि पहले आप अपने अंदर वो लीडरशिप पैदा करें,